तेरे उड़ आए, पाख तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नीले गगन में जाए, पाख तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है, तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है, संगम युग में संगम तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का आगार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है, परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए, तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
ओम शांति। बाप दादा की अनन्य रतन, मधुबन का श्रृंगार और सारे ब्राह्मण परिवार की अति प्रिय आदरणीय सिलू दीदी जी पधारी हैं। हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन करते हैं। वैसे तो सभी दीदी जी से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं दीदी जी का संक्षिप्त में परिचय दूंगी। आप सन 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने जन्म स्थान मुंबई में आपको परमात्म प्राप्ति का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। साकार मम्मा बाबा और दादियों की दिव्य पालना में पलते हुए लौकिक अलौकिक पढ़ाई का सुंदर बैलेंस रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय में बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 69 में आपने आपका समग्र जीवन 21 वर्ष की आयु में मानवता और प्रभु सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद कुछ वर्ष मुंबई हैदराबाद काठमांडू सेवाओं के अतिरिक्त सन 1974 से 1976 तक मॉरिशियस और कुछ अफ्रीकन देशों में ईश्वरीय सेवा कर अनेक राज्यों के सेवा केंद्रों की स्थापना की। आपने पांचों ही महाद्वीपों में 75 देशों से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और विश्व की अनेक आत्माओं में आध्यात्मिक क्रांति के बीज बोकर उनके जीवन में सच्ची सुख शांति की अनुभूति कराई है। 76 से आप मुख्यालय मधुबन घर में ही आप बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में वर्षों से मधुबन में होने वाले राजयोग शिविर और भट्टियों का सुंदर रीति से संचालन कर रहे हैं। सन 23 में वुमन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। आप ही वह महान आत्मा है जो पहले पहले टीवी की सेवाओं के माध्यम से ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बनी और जी टीवी सोनी टीवी चैनल पर आपके वक्तव्य प्रसारित होते रहे। वर्तमान समय आपके विविध कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्था के अपने टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड पर नियमित आते रहते हैं। आपकी वाणी में स्वर कोकिल सी मिठास और माँ सरस्वती की ज्ञान वीणा की चंकार है। बाप दादा ने आपको सर्व पापों को हरने वाली, हरि का द्वार दिखाने वाली, हर की पौड़ी कहकर आपकी महिमा की है। आज तक भी आपके आवाज से रिकॉर्ड की गई अति लोकप्रिय राजयोग कमेंट्री सभी सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती है, जिनको सुनकर भाई बहने गहन आत्मानुभूति में खो जाते हैं। आप मुख्यालय तथा अन्य स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों महासम्मेलनों में आप एक कुशल प्रवक्ता के रूप में अपने वक्तव्य रखते हैं। आप हिंदी अंग्रेजी सिंधी इन तीनों भाषाओं में कुशलता पूर्वक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के साथ साथ एक कुशल अनुवादक भी है। बाप दादा मिलन के समय बाबा के महावाक्य को बहुत ही सरल और सटीक अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर के सुनाने की सेवाएं भी आप ही करते आए हैं। आपकी ऐसी अनेक विशेषताओं के लिए स्वयं बाप दादा ने आपको अनेक वरदानों से सुसज्जित किया है और मधुबन बेहद घर में डबल विदेशी भाई बहनों की सेवा के लिए चुन लिया। दीदी जी, आप परमात्मा का अमूल्य कोहिनूर हीरा हो, रूहानियत की खुशबू से भरपूर रूहे गुलाब हो और अपनी इस रूहानी खुशबू से संसार की रूहानी सेवा में अथक होकर सतत उपस्थित रहते हैं। ऐसी महान तपस्विनी विद्या की देवी हम सबके बीच में उपस्थित है, जिनके मुख से आज हम इस योग तपस्या भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में सुनेंगे और सारी भट्टी के लिए सुंदर प्रेरणाएं और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आदरणीय सिलू दीदी जी,
अपना भी परिचय दीजिए। आप परिचय दो, अपना परिचय दो।
मैं बड़ौदा अटलादरा से, मेरा शरीर का नाम पूनम बहन है, और बचपन से ही हम ज्ञान में चलते हैं और अभी बड़ोदा अटलाद्रा में सेवाएं दे रही हूँ। ओम शांति।
और आपके सारे जो ये भट्टी के प्रोग्राम है वो आप ही कंडक्ट करेंगे, आप ही संचालन करेंगे।
थैंक यू दीदी। ओम शांति।
मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो नीचे अगर बैठ सकते हैं तो, और आगे आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, भाई कोई जो नीचे बैठना चाहे बैठे। और टीचर्स बहने सब कहाँ हैं? सब टीचर्स बहने हाथ उठाएं। हाँ, टीचर्स बहने सब आगे आएंगे। हाँ, माताएं पीछे बैठे, टीचर्स बहने आगे आए, माताएं नीचे बैठ सकती है। भाई कोई नीचे आना चाहे, बहुत नजदीक नहीं क्योंकि यहाँ टोली मिलेगी ना, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाए। बस बस, सब नहीं आए, बैठे रहे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओम शांति, ओम शांति। सभी दिल्ली दरबार से आए हैं, जो दिल्ली से आए हैं हाथ उठाएं। कितने हैं सारे, कितने हैं? 110, 110। अच्छा, दिल्ली के अलावा और कहीं से आए? कहाँ से? एसआर नगर, हैदराबाद। हैदराबाद एसआर नगर के भाई बहन हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है। और दूसरा महादेव नगर, अहमदाबाद। अहमदाबाद महादेव नगर वाले हाथ उठाएं। अच्छा, ये बच्चे कहाँ से आए? महादेव नगर, मालविया नगर। अच्छा, और भी कहीं से आए हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो पांडव भवन में भट्टी करने का मौका मिला है। इस श्रावण महीने में आप सब आए हो यहाँ। वर्षा ऋतु चल रही है, काफ़ी बारिश यहाँ पड़ती है, लेकिन आप सब ने देखा होगा इतनी हरियाली, देखी ना हरियाली यहाँ की? तो बरसात में तो बहुत हरियाली हो जाती है और जैसे लगता है हम सूक्ष्म वतन में सैर कर रहे हैं, बादलों के बीच में, और बीच में रिमझिम वर्षा होती रहती है। दिल्ली में गर्मी है कि बारिश है? गर्मी है। हाँ, तो यहाँ तो आप इतने सुंदर वातावरण में आए हो, तो मधुबन में तो भट्टी करना सब चाहते हैं। जो मधुबन में पहली बार रहेंगे वो यहाँ ही नहीं तो शांतिवन में रहते हैं या ज्ञान सरोवर में आते हैं, तो जो पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सारे ही ऐसे लगते हैं, सारे ही? अच्छा, जो पहले भी रहे हुए पांडव भवन में वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है? अच्छा, पुराने होंगे। तो जो 25 साल से ऊपर ज्ञान में है वो हाथ उठाएं, 25 साल से ऊपर। अच्छा, जो 20 और 25 के बीच में ज्ञान में है, जो 15 और 20 के बीच में ज्ञान में है, जो 10 और 15 के बीच में, जो 5 और 10 के बीच में, जो 1 और 5 के बीच में, वो भी है कोई? और जो पहली बार मधुबन आए हैं वो हाथ उठाएं, वो भी है? पहली बार आए हैं मधुबन। अच्छा, और टीचर सब हाथ उठाएं। मालविया नगर की कितनी टीचर बहने हैं? छह बहने आई है। और महादेव नगर से कितनी टीचर बहने आई है? या एक अकेली आप ही आए? और एसआर नगर से दो, पता क्योंकि आप लोगों को बाबा योग में बैठने के लिए कहा जाएगा गद्दी पर, तो इसलिए पता किया कि कौन कितनी टीचर्स आई है। तो टीचर्स का यही स्थान है, आगे टीचर्स बैठेंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है? तो बहुत अच्छा। मधुवन तपोभूमि वरदान भूमि, माता पिता की तपस्या भूमि, सब दादियों की भी तपस्या भूमि, और सब मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सबका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे आप पहुंचे और आपको अकोमोडेशन मिली, आपको ये बैज मिला, हम तो इसको कहते हैं ये विजय माला आपको मिली, विजय माला। तो इस भट्टी में विजयी होकर के जाएंगे। और इस भट्टी को क्या नाम दिया है? डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी। पढ़ा आपने सभी ने? तो डबल लाइट स्थिति हमें बनानी है इस भट्टी में। और इस भट्टी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो थोड़ा आपको हम सुनाएंगे। उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। लोग आते हैं ना हमारे पास, आते हैं सेंटरों पर, आते हैं यहाँ भी आते हैं, तो पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। कौन सा हमारा उद्देश्य? हमारा बहुत ऊंचा उद्देश्य है, जो सबसे ऊंचा उद्देश्य, जो किसी मनुष्य का उद्देश्य नहीं होता है, ये तो भगवान ही इतना ऊंचा उद्देश्य देते हैं। कौन सा? हमको क्या बनना है? मनुष्य से देवता बनना है, फिर उस देवता में लक्ष्मी नारायण। अब वो तो एक ही बनेंगे, लेकिन उद्देश्य हमारा है मनुष्य से देवता बनना। अब वो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन देवता बनने तक हमारी ये यात्रा है। उद्देश्य माना ठिकाने तक पहुंचना, लेकिन उसके लिए यात्रा तो लंबी है ना। और मनुष्य से देवता बनना, हम तो कहेंगे मनुष्य भी नहीं थे, हम हैवान थे जैसे, क्योंकि पांच विकारों से ग्रसित थे। तो हैवान कहें तो भी गलत नहीं होगा। मानव तो बहुत बड़ी चीज है। मानव तो उसको कहा जाएगा जिसमें मानवता हो, लेकिन मानवता भी नहीं थी, है ना? क्योंकि जो विकारों से ग्रसित है उसमें मानवता भी कहाँ होती है? मानवता माना ही प्यार प्रेम, और वो प्यार प्रेम तो जैसे था ही नहीं। तो इसीलिए मानवता भी नहीं थी, हैवानियत थी। तो बाबा ने आकर के पहले तो हमें मनुष्य बनाया, है ना? और मनुष्य रूप में ब्राह्मण बनाया। तो उस उद्देश्य, देवता के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए पहले तो मनुष्य बनाया, फिर ब्राह्मण बनाया, फिर हमें यही कहा कि अभी तुम बच्चों को फरिश्ता बनना है, फिर फरिश्ता के बाद फिर देवता बनना है। फरिश्ता बनने से पहले भी बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। कितने लक्ष्य बाबा ने हमें दिए? तो ये अनेक लक्ष्य बाबा ने दिए, जिसके आधार से इन पर चढ़ करके हम देवता बनते हैं। तो ये भट्टी है डबल लाइट योग साधना भट्टी। अब ब्राह्मण तो बन गए सब, कोई 30 साल 40 साल, 50 साल 60 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, लेकिन ऐड होते गए, स्कूल तो एक ही है ना, क्लासरूम एक ही है, तो ऐड होते गए। फिर बाबा ने कहा लास्ट सोफा सोफर्स जाएंगे, पुरानों से भी नए आगे चले जाएंगे, वो भी हम देख रहे हैं। और कैसा वंडरफुल स्कूल है, छोटे बच्चे भी हैं हाँ इस क्लास में बैठे हुए, तो बुजुर्ग भी होंगे, कोई 70-80 साल के भी बैठे होंगे। हमारी माता जी सुंदरी दादी कितने साल की है? 90 साल, अच्छा 90 साल की है। फिर भी देखो स्टूडेंट बन के तैयार होके आ गए हाँ, इनके लिए ताली बजाओ, चलाओ उनको, आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आप स्टूडेंट बन के आए हो। अभी फिर से बजाओ, सुनेगी खुद भी ताली बजा रहे। हाँ माल सुंदरी दादी की तो महिमा परम अपार है। सुंदरी बहन और लक्ष्मण भाई, ये कैसे बाबा के सखी लदे बच्चे, कहानी मुझे पूरी पता है, कैसे बाबा ने इनको इनका गंधर्व विवाह कराया था, बंधन में थी, सबको कहानी मालूम है ना इनकी, सबको पता है, तो कैसे बाबा ने कराया और इतने पक्के निकले, जो बाबा का सेवा केंद्र संभाला और इतने बाबा के बच्चे तैयार किए, तो इनका तो गुण जितना गायन करे उतना कम है। इनकी तपस्या, इनका त्याग सचमुच बेमिसाल है। तो उसके अब देखते हैं कितनी अच्छी फुलवारी मालविया नगर की आई है, साथ में और भी हैं, लेकिन खास ये मालविया नगर को ग्रुप दिया गया है, तो औरों को भी लॉटरी मिल गई है, एसआर नगर और महादेव नगर को भी मिल गई। तो देखो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को डबल लाइट बनना है, अब ये लक्ष्य हमें रखना है इस भट्टी में। डबल लाइट किसको कहते हैं? डबल लाइट माना डबल हल्का, और हल्का भी और ज्योति भी, प्रकाश भी, लाइट माना प्रकाश और लाइट माना हल्का, तो डबल लाइट। अब कैसे बनेंगे डबल लाइट? डबल लाइट बनने के लिए जो बोझ है हमको उतारना पड़ेगा, कोई भी बोझ हमको रखना नहीं है, है ना? देवता बनना है तो देवता बनने के लिए पहले ये काम करना है कि जो बोझ है हमारे, अनेक जन्मों के पाप है, वो तो है ही बोझ, लेकिन अनेक व्यर्थ संकल्प जो मन में आते हैं, या जो भी हमारी परीक्षाएं हैं, या जो भी विघ्न है, या जो कुछ भी, ये सब बोझ के रूप में है। ये सब ने हमें कैसे दुखी कर दिया है, अशांत कर दिया है, परेशान कर दिया है, और आजकल तो सबसे बड़ी बीमारी क्रोध की नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की नहीं, उससे भी और बढ़कर है टेंशन, वो भी अभी हल्का हो गया। हाँ टेंशन भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आज का जो बिल्कुल क्लाइमेक्स है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन में चले जाते हैं, माना कि जैसे कि जीवन को एकदम बेकार समझ लेते हैं। डिप्रेशन वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं। हमारे पास एक जुगल आए थे, अपना उनका बच्चा था, 20 साल का लड़का होगा, तो मुझे कहता है बहन जी इसको बहुत डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। तो मैंने कहा अच्छा, तो भी कहानी तो इतनी नहीं मैंने पूछी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की कैसे कि कैसे डिप्रेशन होता है जिसमें जीवन का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा आपको पता है आप कौन हैं? मैंने सोचा मैं थोड़ा पूछकर आत्मा का ज्ञान दूंगी, तो मैंने पूछा आपको पता है आप कौन हैं? कहते नहीं। अच्छा आप जानना चाहते हो आप कौन है? नहीं, पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, और जानना भी नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ। अब मैं आगे क्या सुनाऊँ उसको? जानना भी नहीं चाहता है कि मैं कौन हूँ। तो उनके माता पिता बता रहे थे, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसको बहुत महत्वाकांक्षी था, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, और परीक्षा में फेल हो गया। और जैसे फेल हो गया, वह धीरे 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 डाउन हो गया, धीरे धीरे डाउन हो गया, और धीरे धीरे वो स्थिति आई जो इसकी बुद्धि इतनी मंद हो गई कि अभी ये कुछ करना नहीं चाहता। तो क्या किया जाए बताओ? डिप्रेशन वाले व्यक्ति की कैसे सेवा की जाए? कर सकते हैं या मुश्किल है? कर सकते हैं? कैसे करेंगे आप? हाँ, उनकी महिमा गाकर। देखो हमारी स्थिति भी कैसी थी, तो भगवान ने आकर के सबसे पहले तो हमारा स्वमान जगाया। क्या स्वमान जगाया? हाँ बच्चे, तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम कौन हो? केवल आत्मा हो यही नहीं स्वमान है, इनसे बहुत ऊंचा स्वमान है। इतने सारे स्वमान हमारे अंदर बाबा ने भरे। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जब अव्यक्त मुरली शुरू होती है तो सबसे पहला वाक्य कौन सा होता है? आज, आज बाप दादा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, या मिल रहे हैं, या भी कुछ और। तो मुझे ये जब मैं पहला वाक्य जब सुनती हूँ ना अव्यक्त बाप दादा का, तो मुझे बहुत नशा चढ़ता है। क्योंकि खास करके मुझे जैसे बहन जी ने कहा ना, ट्रांसलेशन करनी होती है, क्योंकि यहाँ से वो ट्रांसमिशन सारी दुनिया में जाती है। जो हम यहाँ से हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो सारे विश्व में बाबा के जहाँ भी सेंटर्स है वहाँ वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पहुँचती है। ये इंटरनेट के माध्यम से तो आजकल कितना सहज है। तो जो वाक्य होता है बाप दादा, आज आज बाप दादा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, तो हिंदी में जो क्रिया है देख रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी क्या बोलेंगे पता नहीं ना, तो इंग्लिश में क्रिया सबसे पहले आती है। बाप दादा इज लुकिंग एट, या बाप दादा इज मीटिंग, तो वो मीटिंग है या लुकिंग एट, वो हिंदी में लास्ट में आती है। बाप दादा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं वो इंग्लिश में पहले बोलना होता है, बाबा इज लुकिंग एट। तो मुझे लिखना पड़ता है, क्योंकि याद थोड़ी रहेगा कितने स्वमान बाबा देते हैं, तो वो लिखती हूँ मैं। और जैसे मैं लिखती जाती हूँ इतना नशा चढ़ता है, क्योंकि मुझे फिर ट्रांसलेशन भी करना है, उनका हिंदी अनुवाद करना है, तो वो नशा चढ़ता जाता है। तो देखो बाबा हमको किस नज़र से देखते हैं, तो सबसे पहला वाक्य ही, महावाक्य ही स्वमान याद दिलाता है, नशा चढ़ाता है। तो ये नशा जो बाबा हमको चढ़ाते हैं, उसके आधार से वो जो खुशी बढ़ती है, उस खुशी से आत्मा गदगद हो जाती है। आज भगवान कौन मिल रहा है हमसे, क्या वरदान हमें दे रहे हैं। तो कहने का भाव है, भगवान हमारे हमें वो स्मृति दिलाता है। तो स्मृति जैसे ही दिलाते हैं तो हमारी आंखें तो खुली जाती है, लेकिन साथ साथ वो खुशी, नशा, उमंग, उत्साह सब बढ़ जाता है। तो देखो भगवान आकर के हमें एक नया जीवन देते हैं। हम कहाँ पढ़े थे? बाबा कई बार कहते कुंभी पाक नरक में पढ़े थे। सात प्रकार के नरक बताते हैं गरुड़ पुराण में, तो उसमें रौरव नरक, कुंभी पाक नरक, विषय वैतरणी नदी, ये तीन तो मुझे याद है, लेकिन चार और भी हैं। तो ये सात प्रकार के नरक बताते हैं, फिर सात प्रकार के स्वर्ग भी बताते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में, क्रिश्चियनिटी में सेवेंथ हेवन, सेवेंथ हेवन कहते हैं, जो सातवां आसमान है वहाँ भगवान रहते हैं। वो तो परम धाम है, परंतु वो सेवेंथ हेवन कहते हैं, भगवान भी हेवन में रहते हैं। तो हम तो समझते हैं कि परम धाम और हेवन में तो बहुत अंतर है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में वो अलग नहीं समझते कि भगवान हेवन में रहते हैं। जो स्कूल में हम लोग प्रेयर्स करते थे, मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ मुंबई में, तो हम लोगों की प्रार्थना होती थी आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारा पिता परमात्मा पिता वो स्वर्ग में रहते हैं, हम आ फादर विच आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम, माना आपका नाम अति पवित्र है, ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, जैसे आपका पवित्र नाम उस हेवन में है स्वर्ग में है, ऐसे ही आपका पवित्र नाम यहाँ इस सृष्टि पर भी है, ऐसे कुछ प्रेयर्स है। तो वो हेवन उस परम धाम को ही मानते हैं और भगवान वहाँ रहते हैं सेवेंथ हेवन में, और इस सृष्टि पर जो हेवन है उसको पैराडाइज कहते हैं, पैराडाइज। और फिर क्या बताते हैं कि पैराडाइज में एडम और ईव को भेजा भगवान ने, जाओ सृष्टि में जाओ। पहले तो 6 दिन सृष्टि को रचने में टाइम दिया, 1 दिन आकाश रचा, दूसरे दिन वायु रचा, तीसरे दिन अग्नि रची, चौथे दिन जल रचा, 5वें दिन पृथ्वी रची, ऐसे 5 दिन 5 तत्व रचे, और 6ठे दिन मनुष्य को रचा। और भगवान रच करके इतना थक गया जो 7वें दिन आराम किया इसीलिए 1 दिन छुट्टी मनाते हैं, 6 दिन काम करो और 1 दिन छुट्टी मनाओ, तो 7वें दिन को साबित डे कहते हैं। और हर धर्म में क्रिश्चियनिटी में रविवार संडे मनाते हैं, और इस्लाम धर्म में शुक्रवार शुक्रवार, और जुदाइज्म ये कौन सा यहूदी धर्म में शनिवार, तो वो शुक्रवार शनिवार रविवार ये 3 दिन अलग अलग धर्मों में, लेकिन हिंदुओं में कोई छुट्टी नहीं है। इस पर एक जोक सुनाते हैं कि एक हिंदू और एक मुसलमान आपस में मिले, तो हिंदू ने कहा हम तो देखो रोज स्नान करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज हम मंदिर में जाते हैं, हम तो रोज जाते हैं। तो मुसलमान कहता है अरे तुम तो रोज, हम तो जुमे के जुमे जुमे के जुमे जुमे के जुमे। अब उसको लगा कि जुमे के जुमे कहना मना जैसे रोज से भी आगे है, रोज करते उससे भी आगे, क्योंकि जुमे के दिन ही उनका, और क्रिश्चियन तो एक संडे को जाएंगे, परंतु भारतवासी रोज रोज स्नान करना जरूरी है। तो देखो कितना अलग हो गए, परंतु ये देवताओं की निशानियाँ हैं, कैसे हम उसी दैवी कल्चर के हैं, हमारा खान पान इतना शुद्ध भारत की वो संस्कृति, वो तो भारतवासी ही अच्छी तरह से समझते हैं। तो सचमुच कैसे विदेशी भाई बहने भी आते हैं, और बाबा और मधुबन और भारत से इतना उनका प्यार है जो बात मत पूछो। तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, ये डबल विदेशी एक नशा दिखाते हैं कि वी आर ओरिजिनल भारतवासीज, हम आदि भारतवासी है लेकिन पीछे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो भी तो और देशों में है, लेकिन जिनका भारत से बहुत प्यार है, जिनका बाबा से बहुत प्यार है, जिनका लक्ष्मी नारायण से बहुत प्यार है, तो वो तो यही समझते हैं ना कि हम तो आदि भारतवासी हैं। एक विदेशी बहन आई थी, वो बाबा को कहती अव्यक्त बाप दादा के पास हम बैठते थे सारी सारी रात, हम बैठ करके वो ट्रांसलेशन करते थे। तो एक बहन बाबा को कहती है बाबा मैंने क्या पाप किया जो मुझे किसी दूसरे देश में जन्म मिला, हमारा जन्म भारत में क्यों नहीं हुआ, हमने क्या पाप किया। तो मैं अंदर सोच रही थी कि क्या कहेंगे बाबा, तो बाबा ने उनको कहा नहीं बच्ची आपने कोई पाप नहीं किया, तो फिर हमारा दूसरे धर्म में और दूसरे देश में जन्म क्यों हुआ, यहाँ भारत में क्यों नहीं हुआ। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छी बात कही, बाबा ने कहा वहाँ इसलिए जन्म हुआ ताकि वहाँ के जो भाषा है वो आपको आपको पता पड़े और उसी अनुसार आप उनकी सेवा कर सको। भारतवासी तो वहाँ जाके नहीं कर सकेंगे, और स्पैनिश भाषा, जैपनीज भाषा या जो भी है, और हर देश की अपनी अपनी भाषा है, हर देश की और दूसरे देश की भाषा से मिलती जुलती नहीं है, बिल्कुल अलग। तो हम भारतवासी थोड़ी ये भाषाएं सीखेंगे, इतनी सारी भाषाएं नहीं जानते हैं। तो आपको उस देश में क्यों जन्म मिला, ताकि आप उस देश की भाषा जान सको और उन आत्माओं की सेवा कर सको। इसीलिए आपका ये पाठ है कि आपका जन्म वहाँ हुआ ताकि उनकी सेवा कर सको। तो थोड़ा बहुत तो संतुष्ट हुई, लेकिन फिर और आगे प्रश्न पूछा, बाबा केवल यही जन्म या कई जन्म हमने वहाँ लिए? तो बाबा ने क्या कहा होगा, यही जन्म केवल इसी जन्म में, बाकी तो आप भारत में ही थे, लेकिन इसी जन्म में आपका जन्म वहाँ हुआ उनकी सेवा के लिए। तो फिर बाबा ने, फिर बाबा को कहती है, बाबा लेकिन हमको वापस नहीं जाना उस देश में, हमको यहीं रहना है। तो बाबा मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती हूँ, हमको क्यों भेज रहे हैं वापस? तो बाबा ने कहा, आपको भेज नहीं रहे हैं, आपको क्यों कहते हैं जाओ, ताकि आप औरों की सेवा करके आ सको वापस आ सको, नहीं तो आप अगर यहाँ ही रहेगी तो उनकी सेवा क्या कौन करेगा। इसीलिए आपको बाबा भेजते हैं ताकि उनकी सेवा करके उनको यहाँ ला सको। अब और क्या जवाब, और क्या कहेगी, और क्या पूछेगी। तो ऐसे बाबा बच्चों को कितना बहलाते थे। तो कहने का भाव है कि बाबा तो बीज है, सारे कल्प वृक्ष का बीज है, सब उनके बच्चे हैं, लेकिन कैसे अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर बाबा के पास वापस आते हैं। तो ऐसे है हमारा ये ईश्वरीय परिवार। लेकिन जो आज संसार की हालत है, उसको देख कर के बाबा के बच्चे कितना वैराग्य लाते हैं, वो तो हम सब अनुभव कर रहे हैं। हाँ, है ना, सबके अंदर बेहद का वैराग्य, जो समझते मेरे अंदर एकदम बेहद का वैराग्य है, हाथ उठाए। सब नहीं हाथ उठा रहे, नहीं है क्या बेहद का वैराग्य? बाबा हद का वैराग्य तो बोलते ही नहीं है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। तो बेहद का वैराग्य किसको कहते हैं, जहाँ फंसना फंसते नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, पर नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि कहाँ फिर जाके उसका उसको चुप्तू करेंगे, नया जोड़ेंगे तो कुछ भी नया बंधन नहीं जोड़ना है, जो है उसको चुप्तू करना है। इसीलिए छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी है, जो है वो है उसको निभाना है। और धीरे धीरे जो बाबा कहते हैं, साक्षी दृष्टा होते होते होते, न्यारा प्यारा होते होते, डबल लाइट होते होते, कैसे घर जाना है। तो इसीलिए डबल लाइट भट्ठी में आप आए हो, जो भी आपके अंदर बातें हैं या व्यर्थ है, जो कुछ भी है, वो सब यहाँ इस भट्ठी में स्वा करना है। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। मधुबन में आना, ये छाप आप अपने अंदर लगाना कि मुझे यहाँ बिल्कुल डबल लाइट होकर के जाना है। तो डबल लाइट किसको कहेंगे, हम उसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हम असम गए थे, असम में रिफाइनरीज है, पेट्रोल की रिफाइनरीज, तो वो रॉ जो पेट्रोल है वो उसके कुएं हैं वहाँ असम में, तो वो पेट्रोल निकलता है, लेकिन वो जो पेट्रोल होता है इतना काला काला होता है, एकदम काला काला। तो वो रिफाइनरीज में क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है। तो हम गए थे देखने के लिए, तो पहले तो इतना काला काला जो तेल जो धरती से निकलता है, तो फिर उसने दिखाया कैसे जो पहली चीज उसमें से निकलती है वो उसका डामर बनाते हैं, डामर, ये रोड का जो डामर होता है ना, उसी में से ही बनता है। तो डामर बनाते हैं और रोड के लिए यूज करते हैं डामर। फिर थोड़ा और आगे दिखाया कि जो दूसरी चीज निकलती है वो डामर तो बहुत भारी होता है, तो वो भारी चीज निकलती गई। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज निकलती है वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म होती है, तो वो ये मोम बनता है, मोम मैक्स वैक्स वैक्स बोल, इससे मोमबत्तियां बनती है। तो हमको दिखाया कितनी सुंदर सुंदर मोमबत्तियां वो उसी में से निकली। फिर तीसरी चीज भी बताई, ऐसे कई चीजें बताई, बहुत तो पूरा तो नहीं देख सके, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बताई कि जो उससे इसे अंत में हवाई जहाज का पेट्रोल बनता है, हवाई जहाज का फ्यूल। और हवाई जहाज का फ्यूल दिखाने के लिए गए तो वो कहां वो डामर जैसा काला ये जो तेल था और कहां वो ये हवाई जहाज का तेल। वो हवाई जहाज का जो तेल था वो पानी से भी पतला, पानी का भी फिर भी थोड़ा वजन होता है, इतना हल्का, क्योंकि अगर भारी चीज डालेंगे कितने हजारों वो ये लीटर डालते होंगे। अगर यहाँ से अमेरिका जाना है, सीधी फ्लाइट होती है, 17-17 घंटा फ्लाइट में लगते हैं और पूरा कहीं रुकती नहीं है, तो कितना पेट्रोल चाहिए। और रॉकेट में जाना है तो कितना पेट्रोल चाहिए, तो सब भरते, पर कितना वो हल्का होता है। अभी हमको घर जाना है, परम धाम जाना है। आज बाबा ने कहा तुम सब मेरी सजनिया हो, तो जब विवाह होता है तो साजन क्या करता है, हा? सजनी को अपने घर ले जाता है। तो मैं आया हूँ सब सजनियों को घर ले जाने, तो कैसे सजे कैसे जाएंगे, सज धज के तो जाएंगे, लेकिन सब जो मायके के घर से जो भी मेरा 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 है उन सबको छोड़ के जाना है, वो तो ससुराल में नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए वो साजन हमको लेने आया है, और साजन हमें क्या कहता है, मेरे साथ चलना है, मैं जैसा हूँ वैसा तुमको बनना है। तो शिव बाबा इतना हल्का है तो हमको क्या करना है, उन जैसा हल्का बनना है। तो उन जैसा हल्का बनने के लिए जो कुछ हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना इस दुनिया में या अनेक जन्मों में, वो सब को खत्म करना है। तो देखो दूसरा मिसाल कौन सा देते हैं, जैसे कि कोई मूर्तिकार हो, तो मूर्तिकार क्या करता है, उसको एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है और उसको कहा जाता है हमको ये पत्थर की मूर्ति बनानी है। अब एकदम पत्थर टेढ़ा बांका पत्थर, अब उस टेढ़े बांके पत्थर में वो मूर्तिकार क्या देखता है, वो टेढ़ा बांका पत्थर नहीं देखता है, वो क्या देखता है, उस टेढ़े बांके पत्थर के अंदर वो मूर्ति देखता है, वो मूर्ति देखता है। हम समझते हैं ये टेढ़ा बांका पत्थर कैसे बनाएगा इसमें से मूर्ति, तो लेकिन वो क्या कहता है कि मूर्ति बनाना माना जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको निकालना। मूर्ति कैसे बनेगी, कोई अलग से थोड़ी, पर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको निकालना। वो निकालता जाता है और धीरे 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 वो मूर्ति का आकार ले लेता है। तो हमारे भी 63 जन्मों के जो इतनी मैल चढ़ी हुई है, इतने विकार चढ़े हुए हैं, इतने पाप चढ़े हुए हैं, तो बाबा कहते सब निकालते जाओ। तो अंदर से क्या निकलेगा, वो निकल गया सब एक्स्ट्रा माल, तो फिर क्या आएगा, अंदर से वो मूर्ति आ जाएगी। तो देखो बाबा हमें वो देवता बनाते हैं, तो देवता बनने के लिए सारी एक्स्ट्रा चीजें हमें निकालनी है। कितनी एक्स्ट्रा चीजें आ गई, ये विकार हमारे अंदर नहीं थे, हम कहते पुराने संस्कार, क्या करें मेरे संस्कार। तो फिर बाबा याद दिलाते हैं तुम्हारे असली संस्कार कौन से हैं, तो दैवी संस्कार तुम्हारे असली संस्कार है, ये संस्कार तो पराय संस्कार है, ये तो माया के संस्कार है, ये आपके नहीं है, आप तो शुद्ध पवित्र सच्चा सोना हो, सच्चा देवता हो। तो ये बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, ये स्मृति जो बाबा दिलाते हैं ना, इसी से ही हमारे जो हमारा जो बोझ है वो हल्का होता है। उसके लिए बाबा कहते हैं ये जो विकार है इनको तुमको जीतना है। लेकिन उसमें भी जो जैसे गीता पढ़ते हैं तो गीता में क्या आता है, भगवान ने कहा इनको मारो, आज भी बाबा ने कहा सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब देह और देह के धर्मों को त्याग मेरी शरण में आओ। तो देह और देह के धर्मों को त्याग करना माना जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेरा फेरी बेईमानी छल कपट निंदा चुगली, ये बड़ी लिस्ट है इनकी भी, ये सब खत्म होना चाहिए क्योंकि आत्मा को शुद्ध सोना बनना है। और उसके लिए क्या करना होगा, अशुद्धता आ गई है सोने में तो उसको आग में डालना पड़ेगा तभी ये खाद निकलेगी। सच्चा सोना बनना है तो सच्चा सोना बनने के लिए जो खाद मिली हुई है वो निकालनी है। और जब सोने को पिघलाते हैं ना, अब सोने में तो कई धातु होते हैं, तो जो सोने में को पिघलाते हैं उसमें जो धातु है ना वो पहले पिघलते हैं, सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबका सोने से नीचे है, लोहा तांबा या ये चांदी इन सब का जो पिघलने का जो हीटिंग जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट वो सोने से कम है। तो इसीलिए पहले क्या होता है वो सारे पिघल जाते हैं, वो लिक्विड बन जाता है, वो निकल जाता है और धीरे 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 वो सब निकल जाता है और एकदम ऊपर से शुद्ध सोना इतना हल्का होता है, वो हल्का सोना ऊपर आता है। ये हमने देखा है, मैं साउथ अफ्रीका गई थी तो वहाँ वो दिखाते हैं, उनका वो म्यूजियम है तो अभी तो सब खानियाँ बाबा कहते ना खाली हो गई है, तो वो एक म्यूजियम बनाया उनका एक खान का वो सोने की खानी, तो वो हमको दिखाने ले गए थे तो वहाँ पर दिखाया कि जो थोड़ा बहुत सोना है वो दिखाया सोना पत्थरों के अंदर, तो उसको कैसे पिघलाते हैं, तो जो पत्थर निकला वो निकला वो निकला और ऊपर से शुद्ध सोना तो ऊपर आता है क्योंकि बहुत हल्का होता है वो शुद्ध सोना, तो वो ऊपर आ जाता है और जो भारी है दूसरी चीजें वो सब नीचे चली जाती है। तो देखो बाबा भी हमको सच्चा सोना बनाने आए हैं, तो सच्चा सोना कैसे बनेगा, ऐसे हम तो है सच्चा सोना लेकिन ये और बातें जुड़ गई है, जैसे मूर्ति है लेकिन और बातें जो जुड़ गई है उसको निकालना है। तो ये सब उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हम वो शुद्ध खालिस सोना है। तो गीता के अंदर भी देखो अर्जुन को कितना मोह दिखाते, बहुत मोह था, मैं कैसे मारूं, ये तो मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई, मैं इनको कैसे मारूं, और भगवान उनको क्या कहते हैं, इनको मारो। हाँ, तो अब ये नहीं समझ रहा है अर्जुन, तो कैसे समझाया अर्जुन को, आप पूरी गीता देखेंगे उसमें अर्जुन को ज्ञान ही दे रहा है कि मोह को कैसे जीतो, बस सारा ज्ञान इसी का ही है। पहली बात उनको क्या कहता है कि इनको पहले आत्मा देखो, मोह को जीतना है तो पहले क्या करो, अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो, ये मेरा मामा है चाचा है काका है मेरा गुरु है ये मत देखो, इनको क्या देखो, आत्मा देखो, क्योंकि वो कह मैं कैसे मारूं, ये मेरे मामा चाचा काका कैसे मारूं, तो कहा पहले इनको आत्मा देखो, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आत्मा का ज्ञान। तो बाबा ने भी क्या किया, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। और ब्रह्मा बाबा ने कैसे आत्मा के ज्ञान को कितना पक्का किया, बाबा का भी बहुत मोह था, अपनी पत्नी में भी मोह था, पत्नी का भी बाबा में बहुत मोह था, बच्चों में कितना मोह था, बिजनेस में कितना मोह था, बड़े बिजनेसमैन थे बाबा, बड़ा ठाट था, राजाओं महाराजाओं के पास जाते थे, लेकिन बाबा का ये मोह कैसे टूटा, सबसे पहले बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया शिव बाबा ने, और इनका मोह कैसे टूटा, अपने बहू से बहुत मोह था, इनकी बहू बहुत सुंदर थी, बाबा की लौकिक बहू बहुत सुंदर थी ब्रिज इंदिरा दादी, और तो वो क्या करता था बाबा, उनको गहने पहना करके राजाओं के पास ले जाता था, तो रानी तो रानियों का अपना महल होता है, तो वो रानी के महल में उनको भेजता था, तो वो रानी जो थी वो इनके गहने देखती थी, बहू जो गहने पहन के जाती थी तो बहुत सुंदर लगती थी, और भी सुंदर लगती थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह थी, तो वो जो बहू जो रानी थी तो वो कहे अरे ये तो हीरा ये जो हार है तो बहुत सुंदर है, ये मुझे खरीदना है। तो बाबा बहुत होशियार थे बिजनेसमैन, वो पहले से ही लेके जाते थे पहले से ही लेके जाते थे कि वो रानी यही पसंद करेगी, और वो बेच के आते थे, तो देखो कितने अच्छे बाबा उनको ऐसे ग्राहक मिल जाते थे। तो बहुत मोह था बाबा का बहू में, लेकिन कैसे उस मोह को तोड़ा, कैसे तोड़ा, उनका भी बाबा में बहुत मोह था, तो पहले कैसे तोड़ा उस मोह को, दीवारों पर बाबा लिखते थे राधिका आत्मा है, बाबा की बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, बाबा की लौकिक युगल, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, वो दीवारों पर लिखता था बाबा। तो वो राधिका पढ़ेगी, यशोदा पढ़ेगी, तो क्या पढ़ेगी, आत्मा। तो कैसे उनका भी मोह हटता गया, तो पहले आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के ज्ञान से जो देह की दृष्टि थी वो धीरे धीरे कम हुई, परंतु फिर भी उसका मोह तो गया नहीं। अर्जुन का मोह पहले चैप्टर में नहीं गया, सेकंड चैप्टर में आत्मा का ज्ञान है, लेकिन इतना जल्दी मोह नहीं गया, तो भी उसने कहा कि कैसे मारूं, हाँ ये आत्मा है, शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है, तो फिर आप इनको मारो, आप तो मार नहीं सकते हो क्योंकि वो आत्मा है, लेकिन कहा फिर भी वो अपने समय पर मरे और बात है, मैं कैसे मारूं, ये तो पाप हो जाएगा। फिर भगवान ने उनको फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया, जो और आगे चैप्टर में आता है, भगवान ने उनको स्वमान याद दिलाया, हे अर्जुन तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम क्षत्रिय हो करके मैदान से भाग जाओगे तो आपके जो वंशज है वो क्या सोचेंगे कि ये हमारे पूर्वज कायर थे, कि वो युद्ध के मैदान से भाग गए, तो युद्ध के मैदान से आप भाग जाएंगे तो कायर कहलाओगे, तुम तो योद्धे हो, योद्धा किसको कहेंगे, क्षत्रिय किसको कहेंगे, क्षत्रिय की विशेषताएं क्या होती है, धर्त पढ़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुवीर रीत सदा चली आई, रघुवीर क्षत्रिय दिखाते ना, तो रघुवीर रीत सदा चली आई, जो मुख से प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा पालन करनी ही है, तो तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध करूंगा, तो अभी क्यों नका, अभी क्यों भाग रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम कौन हो, तो बाबा हमको कितना स्वमान देते, बच्चे तुम कौन हो, पहचानो। तो आत्मा का ज्ञान तो दिया, सबको आत्मा देखी, लेकिन खुद का स्वमान भगवान ने जगाया, लेकिन फिर भी अर्जुन समझा नहीं, वो स्वमान भले कितना भी जगाए तो भी मोह के वश था। फिर तीसरा काम क्या किया भगवान ने, और आगे अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन इस युद्ध में तुम अगर विजयी होंगे तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में आओगे। तो अपना मोह कैसे दिखाता है, कहता है मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं इतने सबको मार के मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग चाहिए नहीं, इसलिए मैं मारना नहीं चाहता हूँ। तो स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए उनको। तो बाबा भी हमको कितना कहते, बच्चे तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनाता हूँ, कितना बाबा प्रलोभन देते हैं, लेकिन बच्चे मोह के वश, कैसे मोह को त्यागूं, कैसे मैं मेरा मेरा त्यागूं, अभी त्यागेंगे नहीं तो स्वर्ग का मालिक कैसे बनेंगे। तो फिर भगवान की बात भी नहीं समझे। फिर चौथी बात भगवान ने क्या दिखाया उनको, ये सब मरे पड़े, शमशान दिखाया है, सब देखो इनकी मौत निश्चित है, इनकी मौत निश्चित है, तुम विजयी हो इसीलिए तुमको युद्ध करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध तुमको करनी है, पर तुम्हारी विजय निश्चित है, ये समझो। तो बाबा भी क्या कहते हैं, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब भगवान ने कहा ये सब मरे पड़े हैं, इनकी तो मौत निश्चित है, तो बाबा भी हमको यही कहते ना, ये सब मरे पड़े हैं। तो अंत में जब अर्जुन बिल्कुल समझ नहीं रहा था, तब भगवान ने क्या किया, इतनी सब युक्तियां भगवान ने रची तो भी समझा नहीं। फिर आखिर क्या किया, कैसे समझा अर्जुन, कैसे वो तदमस्तक हो गया, कैसे घुटने टेके, जब उनको विराट रूप का साक्षात्कार कराया। और विराट रूप का साक्षात्कार कराते उसने देखा कि कैसे उनके मुख में जा रहे हैं, विनाश हो रहा है, बहुत कुछ देखा, विष्णु का विराट रूप देखा, सारा जो कुछ उसका वर्णन आता है वो जब देखा, तब उसको महसूस हुआ, अरे ये मुझे कौन सुना रहा है, ये मुझे कौन कह रहा है कि मोह को नष्ट करो, स्वयं भगवान। तो भगवान मुझे कह रहा है, ये तब तक नहीं समझा, वो क्या समझ रहा था कि मेरा मित्र कृष्ण है, वो हमको सुना रहा है। पर जब उसको रियलाइज हुआ कि भगवान मुझे कह रहा है, तब वो घुटने टेक कर उसने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति आ गई। और जैसे स्मृति आ गई, बस लड़ना चालू कर दिया और विजयी बना। तो बाबा भी तो हमको यही तो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक बनते, सब विजयी बनते है ना, सब विजयी है ना, दास दासी तो नहीं बनना है ना। हाँ, लेकिन उसके पहले डबल लाइट बनना होगा, सब खाली होना होता होगा, नष्टो मोहा होना होगा। तो इसीलिए आप यहाँ आए हो डबल लाइट भट्ठी करने, तो ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, वो तो भविष्य का। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे ये पढ़ाई अभी की नहीं है, आज भी बाबा ने कहा ना, ये पढ़ाई कब की है, कब के लिए है, सतयुग के लिए। मनुष्य तो केवल वर्तमान को ही देखते हैं। तो इसीलिए आप सबका स्वागत है, आपकी आपको मुबारक है, बाबा के घर में, पांडव भवन में, तपस्या धाम में भट्ठी करने का ये 3-4 दिन का जो मौका है, इससे पूरा लाभ लेना, एक एक सेकंड का महत्व समझ करके उससे पूरा लाभ लेना, ठीक है। फिर तो मिलते रहेंगे, अभी तो आप आज आए ही हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने लक्ष्य और उद्देश्य समझाया। हम सभी कर्तव्यध्वनि से दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। बेहद के मधुबन घर में बाबा के ज्ञान का मधुरस पीकर हम सब मधु समान बनने आए हैं, तो ऐसी योग तपस्या भट्ठी का आरंभ भी हमेशा की तरह मधुरवाणी ग्रुप के मधुर स्वागत गीत के द्वारा करने के लिए सतीश भाई सहित साथी ग्रुप हमारे बीच में उपस्थित है। मधुबन के हर आयोजन की शुरुआत मधुरवाणी ग्रुप के उमंग उत्साह और ज्ञान की प्रेरणाओं भरे एक नए गीत के साथ किया जाना ये मधुबन की रीत है। सतीश भाई जी को तो सभी जानते हैं ना, साथ में हमारे निरंजन भाई और हल्दर भाई जो हॉस्पिटल में सेवा देते हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मधुरवाणी ग्रुप को, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं तालियों से। और इस गीत के द्वारा भट्ठी के लिए बाबा की प्रेरणाओं का उमंग उत्साह खुद में भरेंगे मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति,
ओम शांति।
बाबा संग मधुबन का कण कण, बाबा संग मधुबन का कण कण स्वागत को ललचाए हैं। सावन के रिमझिम में मालवीय सितारे आए हैं। आज सबका स्वागत करने हम तीनों भाई आए हैं। मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत को हर्षाए हैं। दीदी ने कहा मधुर वाणी गुरु, तेरा मधुर बनाने का कोशिश जारी है। आप सबके स्वागत में भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, भैया सतीश भाई के लिए। कितने अच्छे गीत लिखते हैं ये आशु कवि हैं। हमको मजा आता है जो भी पार्टी में आते हैं या शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनके रिलेटेड गीत लिखना ये कोई आम बात नहीं है। ये बाबा का वरदान है उनके लिए और हमको ये सौभाग्य है उनके अंग संग रह के हमको मजा आता है। इसलिए शुक्रिया भाई जी का और आप सबका भी।
दिल्ली के अलौकिक इतिहास में दिल्ली का स्थान तो प्रमुख है ही है। दिल्ली दरबार और दिल्ली राजधानी बनी थी, फिर राजधानी बनने वाली, आप सब वहीं पर है ही हैं और हम सब दिल्ली आने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। दिल्ली की सेवाओं में मालवीय नगर, और मालवीय नगर कहते ही हमारी सुंदरी बहन लक्ष्मण भाई याद आते हैं जिन्होंने बाबा के साथ इतिहास लिखा है, पूरा इतिहास समाया हुआ है। बहुत खुशी होती है हमारे बीच में बैठे हैं, भले समझ न पाए सुन न पाए। सुन रही हैं दीदी? हाँ जी 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 जी, बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजा के ऐसी विभूतियों का स्वागत करते हैं।
करने दिल्ली वाले आए हैं, मालवीय नगर वाले मधुबन को महकाए हैं। दिल्ली के राजे महाराजे दिल दरबार सजाए हैं, दिल्ली के राजे महाराजे दिल दरबार सजाए हैं। मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं, मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। बाबा का दिल है इंद्रप्रस्थ अब पार है, दिल्ली बाबा का दिल है इंद्रप्रस्थ अब पार है। मालवीय नगर ने लिखा एक स्वर्णिम इतिहास है, मालवीय नगर ने लिखा एक स्वर्णिम इतिहास है। सुंदर दीदी लक्ष्मण भाई साकार का स्नेह समाए हैं, दिल्ली के राजे महाराजे दिल दरबार सजाए हैं। मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं, मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। दादी सुना रही बाबा सा गुण मूरत बनना, मीठी दादी सुना रही बाबा दा गुण मूरत बनना निमित और निर्माण भाव सन निर्मल वाणी है रखना निमित और निर्माण भाव सन निर्मल वाणी है रखना मन के मुख के मोबाइल के मौन में सिद्धि पाए हैं दिल्ली के राजे महाराजे दिल दरबार सजाए हैं मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं तपस्या भट्टी यादगार बन जाए ऐसी करे तपस्या भट्टी यादगार बन जाए शुरू शुरू वाली भट्टी एक बार फिर हो जाए शुरू शुरू वाली भट्टी एक बार फिर हो जाए डबल लाइट फरिश्ता बनना मन में लगन लगाए हैं दिल्ली के राजे महाराजे दिल दरबार सजाए हैं मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं स्वागत वाले वाणी में स्वागत है स्वागत वाले वाणी में स्वागत
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का उनके बिना हमारा स्वागत अधूरा रहता है ना तो हर बार इतनी मेहनत करके जो बनाते हैं हम सतीश भाई और उनके ग्रुप का बहुत बहुत फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं दीदी जी का भी